नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ प्रवीण स्वामी का लेख, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से हिटलर, स्टालिन और CIA ने मिलकर इस्लामिक स्टेट आतंकियों के लिए मास्को तक का रास्ता तैयार किया। पूर्वी प्रशिया में युद्धबंदियों की जेल शिविर में तैनात सैनिकों के कंधों पर जो बैज लगे थे, उन पर समरकंद के विजेता तैमूरलंग द्वारा बनवाई गई चाहे जिंदा मस्जिद की तस्वीर के साथ ये शब्द कढ़ाई करके हुए लिखे थे, बिज अल्लाह बिलेन, यानी अल्लाह हमारे साथ है। थर्ड राइक यानी नाजी जर्मनी के ये सैनिक किसी और नियति की ओर कूच करने की उम्मीद लगाए थे। उज़्बेक स्कूल शिक्षक से नाजी राजनीतिक अधिकारी बने बाय मिर्जा हाइत ने इन सैनिकों से कहा, आप लोग ईस्टर्न लीजन्स के नींव के पत्थर हैं, एक दिन जब पूरब के देश आज़ाद हो जाएंगे तब आप उस होमलैंड यानी वतन की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। पिछले सप्ताह इस्लामिक स्टेट गुट से जुड़े जिहादियों ने मॉस्को के क्रोकस थिएटर में 100 से ज़्यादा लोगों का कत्ले आम कर दिया। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आरोप लगाया कि क्लासनिकोवों पर रखी इन हमलावरों की उंगलियां पश्चिमी देशों के इशारे पर हरकत में आईं। यह दावा बहुत चालाकी भरा था और दूसरे को दोषी ठहराने के मकसद से दिया गया था, लेकिन इसने एक सदी से ज़्यादा समय तक चले लगभग अज्ञात बर्बर युद्ध को रोशनी में ला दिया। सीरिया में अलकायदा के अग्रिम गुट अल नुसरा की एक शाखा अजनद अल कवकज के जिहादी 2 साल से ज़्यादा से यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर रूस से लड़ रहे हैं। रुस्तम अजीयेव के नेतृत्व में ये जिहादी इस उम्मीद में हैं कि इस युद्ध से उत्तरी काकेशस चेचनिया में उनका होमलैंड आज़ाद हो जाएगा। 2016 में इस्लामिक स्टेट की कथित खिलाफत के विध्वंस के बाद से यूक्रेन में जा बसे मध्य एशियाई जिहादियों की संख्या कम हुई है। यूक्रेन रूस युद्ध में जिहादी धारा की अनपेक्षित भागीदारी उस यातनापूर्ण इतिहास की देन है जिसमें नाजी एडोल्फ हिटलर, सोवियत तानाशाह स्टालिन और अमेरिकी खुफिया संगठन CIA ने अपनी अपनी तरह से भूमिका निभाई थी। 1999 में जब द्वितीय चेचन युद्ध चल रहा था और ग्रोजनी शहर मलबे में बदल दिया गया था, तब पुतिन ने गुस्से में घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में रूस अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहा है, यूरोप को घुटने के बल झुककर हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बदकिस्मती से हम अकेले इससे लड़ रहे हैं। और इस गुस्से की वजह भी थी, अमेरिका तालिबान को इस उम्मीद में शह दे रहा था कि वो कच्चे तेल में संपन्न मध्य एशिया में अपना दबदबा बढ़ा लेगा। तार और नौगे हमलावर दासों की खोज में पूर्वी यूरोप की कृषि भूमि को सदियों तक तहस नहस करते रहे। इतिहासकार दारियुस कोलोजेक्सिक का अनुमान है कि 1550 से 1700 ईस्वी के बीच मस्कोवी और पोलैंड लिथुएनिया से 20 लाख लोगों को दास बनाया गया। दासों के व्यापार ने मध्य एशिया के तुर्क क्षेत्र को सभ्यता के केंद्रों के रूप में उभरने के लिए आर्थिक आधार का निर्माण किया। अफ्रीका से अमेरिका भेजे गए दासों के विपरीत इन दासों को हालांकि 2 पीढ़ियों के अंदर ऑटोमन समाज में समाहित कर लिया गया, लेकिन उन हमलों ने उनके अपने होमलैंड पर यातना के गहरे जख्म छोड़ दिए। लेकिन 19वीं सदी का अंत होते होते इतिहास का पहिया उल्टा घूमा। रूसी साम्राज्य ने क्रीमिया के रास्ते पूरब की ओर पैर फैलाए और चेचन, इंगस और दागिस्तानियों के होमलैंडों पर कब्जा कर लिया। 1865 में फौरी हमले करके और पूरब की ओर खिवा और खोकंद के खानतों, बुखारा के अमीरात और तारतार के जियोटेपे को कब्जे में ले लिया गया। मर्व के खानत को बिना कोई गोली चलाए जीत लिया गया। रूसी साम्राज्य ने इस्लाम के विस्तार को रोकने के लिए हाजियों की संख्या में कटौती की और धार्मिक अंशदान तथा चंदे आदि बंद कर दिए। इतिहासकार मार्था ओलकॉट के अनुसार इन कदमों के विरोध में विद्रोह हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कपास का व्यापार ठप हो गया और इसके साथ मॉस्को तथा इस्तांबुल के साम्राज्य भी ढह गए। इसके बाद तुर्क क्रांतिकारी इस्माइल एनवर के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में बगावत फूट पड़ी। आज जो पूर्वी उज्बेकिस्तान, दक्षिणी किर्गिस्तान और उत्तरी ताजिकिस्तान है, उनके तिराहे पर स्थित घाटी में कई आंदोलन शुरू हो गए। इतिहासकार बीट्रिस मंज के मुताबिक इन आंदोलनों का नेतृत्व प्रायः इसकी ताकतवर सूफी जमात के मौलवियों के हाथ में होता था। 1924 में सत्ता में आए सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने ज़मीन की चकबंदी, मौलवियों की गिरफ्तारी और धार्मिक संस्थाओं को बंद करके इन विद्रोहों को कुचल दिया। सोवियत विचारक लियुत्सिन क्लिमोविच के लिए इस्लाम एक शत्रु था जिसे कुचलना ज़रूरी था। एक ऐसी विज्ञान प्रतिरोधी प्रतिक्रियावादी वैश्विक अवधारणा थी जो विज्ञान सम्मत मार्क्सवादी लेनिनवादी अवधारणा से भिन्न तथा प्रतिकूल थी। इतिहासकार जोनाथन ट्रिग ने लिखा है कि जिस तरह नाजी वाफेन शुड स्टाफेल मिलकर लड़े, सोवियत संघ से लड़ने के लिए गठित किए गए मुस्लिम लश्करों को भी तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। मुक्ति की उम्मीद करने वालों को कीमत चुकानी पड़ी। 1944 की गर्मियों में क्रीमिया के तारतारों को सोवियत खुफिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर नाजियों का साथ देने का आरोप लगाया और मध्य एशिया इनको रवाना कर दिया गया। मवेशियों को ढोने वाले चारों तरफ से बंद गाड़ियों में लंबी यात्रा के दौरान हज़ारों लोग दम घुटने से मर गए। हज़ारों लोग फार्मों और गुलागों में कुपोषण और रोगों के कारण मर गए। पत्रकार यान जॉनसन ने खुलासा किया है कि इस नरसंहार के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने बाकी बचे मुस्लिम लश्करों की भर्ती शुरू कर दी थी ताकि उनका इस्तेमाल सोवियत संघ से लड़ने में किया जा सके। लश्करों के प्रभारी नाजी अधिकारी गेरहार्ड वोन मेंडे और उसके उज्बेक दास वाली कयूम खान शीत युद्ध के इस गुप्त ऑपरेशन के केंद्र बनकर उभरे। जॉनसन ने लिखा है कि उच्च अधिकारी होने के बावजूद मेंडे विश्व युद्ध के बाद की पश्चिम जर्मनी में बंगला गाड़ी नौकर और एक घोड़े के साथ शानदार जीवन जी रहा था, जबकि उसकी कमाई का कोई भी सोर्स पता नहीं था। एक सदी के अंदर तीसरी बार रूस ने खुद को उबलती मुस्लिम आबादियों से लड़ता पाया। इस बार उसका मुकाबला शामिल बसाइव जैसे चेचन से था, जिसने लड़ने के गुर अलकायदा और अफगान मुजाहिदीन से सीखे थे। 1994 से 96 में जिहादियों के खिलाफ नाकाम अभियान के बाद पुतिन ने 1999 से 2004 के बीच चेचनिया से लड़ाई लड़ी। बर्बर रूसी हमले के बाद आतंकवाद बड़े पैमाने पर उभरा। जिहादियों ने बेसलन गांव में 334 लोगों को मार डाला, जिनमें 184 स्कूली बच्चे थे, और इसके बाद कई शहरों में आत्मघाती हमले किए। फरगना घाटी में भी ज़बरदस्त जिहादी हिंसा हुई। 1990 के दशक में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने तानाशाह इस्लाम करीमोव की सरकार से लड़ाई की। दक्षिणी किर्गिस्तान में भी छिटपुट हिंसा हुई। सेना के हाथों इन आंदोलनों की हार के बाद मध्य एशिया और उत्तरी कॉकेशस के जिहादी सीरिया चले गए और अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेट से जुड़ गए। वहाँ वे जिहादियों से मिल गए। विद्वान कॉलेविस कहते हैं कि रूसी भाषी जिहादियों ने सीरियाई सरकार और उसे मदद देने वाली रूसी सेना से लड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन खिलाफत के विध्वंस ने फिर से उन्हें बेवतन कर दिया। नूरबेक बेग मुर्जायेव ने लिखा है कि जर्मनी और नीदरलैंड में इस्लामिक स्टेट द्वारा हमलों की साजिश करने के लिए पिछले साल ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जिन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने यूरोप में शरण लेने के लिए यूक्रेन को पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया था। पुतिन ने इतिहास से सीख ली है कि भू राजनीति में कोई नैतिक पश्चाताप नहीं चलता, जैसा कि 1945 के बाद भी हुआ था। उन्हें डर है कि पश्चिमी देश नए शीत युद्ध में इस्लामी आतंकवादी गुटों को हथियार बना सकते हैं। इस क्षेत्र में जिहादी गुटों से रूसी राष्ट्रपति जिस तरह निपट रहे हैं, उसमें बेशक अवसरवादिता भी शामिल है। काबुल के पतन से काफ़ी पहले रूस ने अफगान तालिबान के साथ दोस्ती इस उम्मीद में बनाई थी कि अमेरिका पर दबाव बनेगा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वे खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। क्रोकस थिएटर तक पहुंचने वाला रास्ता ऐसे कई रक्तरंजित मील के पत्थरों से होकर गुजरता है जो महाशक्तियों की सनक और उबलते असंतोषों को शांत करने में उनकी अदूरदर्शिता तथा नाकामी के सबूत हैं। आज भी जबकि रूस और पश्चिमी देश जिहादियों के खतरे का समान रूप से सामना कर रहे हैं, वे उनसे लड़ने के लिए एक साथ होंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे दिप्रिंट सुप्रभात के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।